का था, रूह वही रूप नया।
अगली कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रेल यात्रा और इसे लिखा है गीदम उपासा ने। रेलगाड़ी जिनोवा से अभी रवाना ही हुई थी और मार्सलॉर्ड की तरफ अग्रसर थी। सुनहरी रेत पर धीरे धीरे लोहे के सांप की भांति रेंगती हुई किसी मांद में घुसते पशु की तरह एक अंधी स्याह सुरंग में दाखिल हो रही थी। रेल के आखिरी डब्बे में एक मोटी स्त्री और एक युवा शख्स आमने सामने सीट पर बैठे थे। वे परस्पर चर्चा नहीं कर रहे थे लेकिन बीच बीच में यूं ही एक दूसरे को देख लेते थे। वो स्त्री तकरीबन 25-30 वर्ष की रही होगी। वो खिड़की के करीब बैठी हुई थी और रेल के बाहर पीछे छूटते जा रहे दृश्यों को खामोशी से देखे जा रही थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, मोटे गाल और बहुत भरे वक्षस्थल वाली वो स्त्री पियडमोंट से थी। वो लकड़ी की सीट पर काफी सारा सामान जमाए बैठी थी और उसके घुटनों पर एक छोटी सी टोकरी मौजूद थी। सामने वाला युवक लगभग 20 वर्ष का होगा। वो बहुत दुबला पतला था। उसकी गहरी सांवली रंगत ये दर्शा रही थी कि वो अवश्य खुली धूप में कुछ ज्यादा ही काम करता रहा होगा। एक चादर में उसका तमाम सामान बंधा हुआ था। भारी जूतों की एक जोड़ी, दो पतलून, एक शर्ट, एक कोट और उसकी सीट के नीचे एक रस्सी से बंधी गेंती और फावड़ा धकेल कर नीचे रखे गए थे। वो नौकरी या कार्य की खोज में फ्रांस जा रहा था। आकाश में चढ़ा सूर्य अपनी तेज रोशनी और चमक समुद्री तटों पर उड़ेल रहा था। वो मई माह के अंतिम दिन थे और एक विचित्र प्रकार की भीनी भीनी मोहक महक रेल के डब्बे में प्रविष्ट हो रही थी। पक रहे संतरों और नींबू की एक मीठी मीठी सौंधी खुशबू रेल की पटरी के दोनों तरफ और रेल लाइन के किनारे बसे रईसों और किसानों के घरों में खिले ताजे गुलाबों की खुशबू से मिलकर एक विचित्र मादकता उत्पन्न कर रहे थे। इन समुद्री तटों पर इतने गुलाब खिले हुए थे कि वे गुलाब संपूर्ण इलाके में एक तेज खुशबू, एक ऐसी खुशबू फैला रहे थे जो शराब के नशे से भी कहीं ज्यादा मदहोशी भर देती है। रेल बेहद मंथर गति से जा रही थी, गोया इस अनोखे बाग को छोड़ने का उसको भी काफी अफसोस हो रहा हो। वो कुछ कुछ देर में छोटे छोटे सफेद पुते हुए मकानों के समूह वाले स्टेशनों पर रुकती और उसके पश्चात तेज सीटी देकर इत्मीनान से आगे को बढ़ जाती। कोई रेल में चढ़ता ही नहीं था। सभी को यही लगता था गोया तमाम दुनिया सोने चली गई है, या शायद सबने ये निर्णय कर लिया है कि गर्मी की इस उमस भरी सुबह में यात्रा ही ना की जाए। वो मोटी ग्रामीण स्त्री बीच बीच में आंखें बंद कर लेती, किंतु जब उसकी गोद में रखी टोकरी उसकी गोद से गिरने या नीचे खिसकने लगती तो चौंक कर शीघ्रता से आंखें खोल लेती और उसे तत्काल पकड़ लेती और संभाल कर दोबारा अपनी गोद में ऊपर चढ़ा लेती, जमा देती और तब कुछ देर के लिए खिड़की के बाहर का दृश्य देखने लगती। वो दोबारा थोड़ी देर के बाद कुछ देर के लिए आंखें झपकाकर ऊंघने लगती। पसीने के नन्हे कण उसकी भौहों के ऊपर उभर आए थे। वो बड़ी कठिनाई से सांसें ले रही थी, गोया उसे कोई अंदरूनी गहरी तकलीफ हो। सामने बैठे नौजवान का सिर नींद के कारण बार बार झटके से उसके सीने पर आ जाता था और वो एक थके हारे मेहनती श्रमिक की गहरी नींद में सो रहा था। एकाएक जैसे ही रेल ने एक छोटे से स्टेशन को छोड़ा, वो ग्रामीण महिला दोबारा जाग गई और अपनी गोद में रखी टोकरी को खोलकर उसमें से डबल रोटी का एक बड़ा भाग, कुछ उबले अंडे, वाइन का एक फ्लास्क और कुछ लाल खुबानियां निकाली। सामने की सीट पर बैठा युवक भी इस दौरान उठ गया था और वो सामने बैठी स्त्री को ताक रहा था और उसकी गोद में रखी टोकरी से उठने वाले और उठकर मुंह तक जाने वाले प्रत्येक निवाले को गौर से देख रहा था। वो युवक अपने दोनों हाथ बांध कर बैठा था, उसकी दृष्टि सामने टिकी हुई थी और होंठ खामोशी से बंधे हुए थे। वो स्त्री बहुत स्वाद ले लेकर खा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह से अंडों का एक हिस्सा कंठ से नीचे उतारने के लिए वाइन का एक बड़ा सा घूंट गटकती और सांस लेने के लिए कुछ देर ठहर जाती। थोड़ी सी देरी में हर चीज गायब हो गई, ब्रेड, अंडे और खुबानियां भी। जैसे ही उस स्त्री ने अपना भोजन खत्म किया, सामने बैठे युवक ने अपनी आंखें दोबारा मूंद ली और झपकी लेनी आरंभ कर दी। स्त्री को कुछ देर के पश्चात घबराहट से होने लगी, तो उसने आराम पाने के विचार से अपना ब्लाउज थोड़ा ढीला किया और तभी उस युवक ने अचानक उस स्त्री को दोबारा देखा। शायद उस स्त्री ने अपनी तरफ युवक के देखने पर कोई तवज्जो ही नहीं दी और अपनी फ्रॉक के बटन खोलना जारी रखा। अपने मोटापे तथा मोटी चर्बी के कारण, फ्रॉक के मध्य के खुले बटन के कारण, फ्रॉक के नीचे पहनी गई गंदी लिनन की सफेद शमीज और छाती का कुछ भाग नजर आ रहा था। कुछ देर पश्चात जब उसको राहत अनुभव हुई, तो अपने सामने बैठकर यात्रा करने वाले युवक की ओर मुड़ते हुए उसने इटालियन भाषा में अपनी राय जाहिर की। यात्रा के लिए ये मौसम कितना बढ़िया है ना, क्या आप पियडेमोंट से ताल्लुक रखते हैं, उसने पूछा। वो बोला, मैं अस्ती से हूं और मैं कासले की हूं। वे दोनों पड़ोसी गांव के थे, इसलिए दोनों परस्पर बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने अपने घरों के विषय में बातें की और पाया कि कई लोग समान रूप से उन दोनों के परिचित थे, जिन्हें वो दोनों ही जानते थे। उन दोनों ने चंद लोगों के नाम गिनाए और आपस में वे दोनों काफी हद तक मित्र हो गए। इटालियन भाषा के छोटे छोटे शीघ्रता से निकलने वाले अस्पष्ट शब्द उनके होठों से फिसल रहे थे। उसके पश्चात वे परस्पर अपने अपने विषय में बातें करने लगे, एक दूसरे को परिचय देने लगे। वो विवाहिता थी और उसके 3 बच्चे थे, जिन्हें वो अपनी बहन के यहाँ छोड़ाई थी, क्योंकि मर्सी टोले में एक फ्रांसीसी युवक के यहाँ उसे आया का अच्छा काम मिल गया था और वो नौजवान काम की खोज में फ्रांस जा रहा था। धीरे धीरे गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। रेल के डिब्बे की छत पर बरसने वाली तेज धूप के कारण वो भट्टी जैसा तपने लगा। लू के कारण धूल का एक झोंका डिब्बे की खिड़कियों के भीतर आ गया। पटरियों के दोनों ओर पूरी तरह पके संतरों और नींबू की महक अब और ज्यादा तेज होने लगी थी। उसके पश्चात दोनों यात्री अपनी अपनी जगह पर कुछ देर के लिए सो गए। कुछ देर बाद उन दोनों की नींद तकरीबन एक साथ टूटी और वो एक साथ जागे। दूर क्षितिज पर सूर्यास्त का दृश्य था और सूर्य सामने नीचे समुद्र पर अपनी चमकीली किरणें बिखेर रहा था। वातावरण पहले से कहीं ज्यादा हल्का, सुहावना और ठंडा हो गया था। वो स्त्री अभी भी उठने के उपरांत बड़ी कठिनता से सांस ले पा रही थी, जैसे जैसे हांफ रही हो। उसकी फ्रॉक के बटन तब भी खुले हुए थे। उसके गाल भरे भरे और कुछ गीले गीले लग रहे थे। वो बहुत थके लहजे में बोली, मैंने कल से अपनी छोटी बच्ची को दूध नहीं पिलाया है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, लगता है कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। उस युवक ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसकी इस बात का क्या क्या उत्तर दे। उसने दोबारा कहना शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो, एक ऐसा वजन जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे बहुत थकान हो रही है। उसने जवाब दिया, हाँ सच में ये तकलीफ दायक तो होता ही है। वो वाकई बेहद बीमार और उद्विग्न लग रही थी और शायद बेहोश होने वाली थी। फिर वो धीरे से बुदबुदाई, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर ठहर गई। स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म से लगी चार दीवारी के बाहर चिथड़ों में लिपटी एक कृशकाय स्त्री एक रोते हुए शिशु को अपनी गोद में लेकर खड़ी थी। उस आया की दृष्टि उस मां और बेटे पर पड़ी। तब उसने प्रार्थना युक्त शब्दों में कहा, वहां बाहर खड़ी उस स्त्री की भी मैं सहायता कर सकती हूं और उसका बच्चा मेरी सहायता कर सकता है। अगर वो स्त्री अपना बच्चा थोड़ी देर के लिए मुझे उधार दे दे तो मैं उसे 5 फ्रैंक भी दे सकती हूँ। उस बच्चे को 10 मिनट तक दुग्धपान करवा सकती हूँ, इससे बच्चे की भी भूख शांत हो जाएगी और मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा। वो पुनः एक क्षण रुकी। उसके उपरांत उसने अपनी गर्म हथेलियों से कई मर्तबा अपनी भौहों के ऊपर उभरे पसीने की बूंदों को पोंछा और तकरीबन आह भरते हुए बोली, मैं अबाउट नहीं ठहर सकती, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। रेल ने स्टेशन छोड़ दिया था और वो अब भी फूलों के बाहों से धीरे धीरे रेंग रही थी जो अपनी तीव्र गंध बिखेर रहे थे। बीच बीच में सामने फैले नीले समुद्र में कोई पाल वाली नौका बहती नजर आती और साफ समुद्री पानी में उस पाल वाली नौका का स्पष्ट प्रतिबिंब ऐसा भ्रम पैदा करता गोया कोई दूसरी नौका पानी में उलट गई हो। सामने सीट पर बैठा शख्स भौचक्का हो गया था। वो हकलाते हुए बोला, किंतु मैं शायद आपकी सहायता कर सकूं, हो सकता है। वो तकरीबन हांफते हुए बोली, हाँ, अगर आप मुझ पर मेहरबानी करें तो मुझ पर बड़ा बड़ा उपकार करेंगे। मैं बोर नहीं सह सकती, जरा भी नहीं सह सकती। वो नौजवान उस स्त्री के समक्ष घुटनों के बल बैठ गया। वो एक मां के समान उसके सामने झुक गई, जैसे वो उसका अपना बेटा हो। उस स्त्री ने अपने दोनों हाथ उस नौजवान की पीठ पर रख दिए और अब वो बड़े इत्मीनान से सांस ले पा रही थी तथा बड़ी निश्चिंतता से बहती हवा के साथ खिड़कियों से होकर घुसने वाली तेज खिले फूलों की भीनी भीनी खुशबू का लुत्फ उठा पा रही थी। इन फूलों की खुशबू बहुत बढ़िया और तेज है ना, उसने पूछा। थोड़ी देर बाद उस स्त्री ने युवक को खुद से अलग कर दिया। उस स्त्री ने युवक से कहा, आपने मुझ पर बहुत भारी कृपा की है, मैं सचमुच आपकी शुक्रगुजार हूं। तब युवक ने शुक्रिया देते हुए आभार व्यक्त करने के लहजे में कहा, वो तो उल्टे मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक भी दाना मेरे पेट में नहीं गया था। आप सुन रहे थे कहानी रेल यात्रा। इसके लेखक हैं गी द मोपासा और गाथा के जरिए आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।